ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि एआई इम्पैक्ट समिट भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ति का उपयोग करने की दिशा में विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के नवे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, 242 विद्यार्थियों को प्रदान की उपाधि। माओवादियों के शीर्ष नेता देवजी और मल्ला राजी रेड्डी ने अन्य माओवादियों के साथ तेलंगाना पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। और कल से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र। 20 मार्च तक चलने वाले सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट भविष्य में विश्व स्तर पर एआई की शक्ति के उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ है। आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बताया कि समिट के लिए नई दिल्ली में कई देशों के नेता, उद्योगपति, नव प्रवर्तक और स्टार्टअप क्षेत्र से जुड़े लोग एकत्र हुए।
इस समिट में दुनिया को एआई के क्षेत्र में भारत की अद्भुत क्षमताएं देखने को मिली है। इस दौरान भारत ने 3 मेड इन इंडिया एआई मॉडल भी लॉन्च किए। ये अपने आप में अब तक की सबसे बड़ी एआई समिट रही है।
श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने इंडिया एआई प्रदर्शनी में विश्व नेताओं को कई वस्तुएं दिखाई। प्रधानमंत्री ने समिट की सफलता के लिए देशवासियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में किसान अब न केवल उत्पादन पर बल्कि गुणवत्ता, मूल्यवर्धन और नए बाजारों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। श्री मोदी ने बताया कि राष्ट्रपति भवन में कल से राजगोपालाचारी उत्सव मनाया जाएगा। 1 मार्च तक चलने वाले इस उत्सव के दौरान राष्ट्रपति भवन के केंद्रीय प्रांगण में स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण होगा। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि विद्यार्थी पूरी लगन से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और तनाव में नहीं हैं।
मेरे प्यारे बच्चों, आप तो एग्जाम वॉरियर हैं। मुझे विश्वास है आप सभी पूरे मन से इम्तिहान की तैयारियों में लगे होंगे। खुद पर भरोसा रखिए, जो पढ़ा है उसे पूरे मन से लिखिए और जो नहीं आया उस एक सवाल को अपने मन पर हावी मत होने दीजिए। और एक बात, अपने माता पिता और शिक्षकों से बात करते रहिए। वे आपके नंबरों से नहीं, आपके प्रयास से आपकी पहचान करते हैं।
श्री मोदी ने रमजान और आगामी होली के त्योहार की देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने वोकल फॉर लोकल के मंत्र को भी दोहराया।
हमारे होली के त्योहारों में या अन्य कोई भी त्योहार में अनेक ऐसे साजो सामान घुस गए हैं जो विदेशी हैं। इन्हें त्योहारों से दूर रखिए, स्वदेशी अपनाइए। जब आप स्वदेशी खरीदते हैं तो देश को आत्मनिर्भर बनाने के अभियान में भी मदद करते हैं।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर स्थित अपने निवास पर जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मन की बात का प्रत्येक एपिसोड आत्मनिर्भर भारत, तकनीकी सशक्तिकरण और सामाजिक जागरूकता की दिशा में देश के बढ़ते कदमों का सशक्त उदाहरण है। यह कार्यक्रम नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करता है और जन जन की सकारात्मक पहल को राष्ट्रीय पहचान दिलाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों में छिपी हुई प्रतिभाओं को जानने और पहचानने का अवसर मिलता है।
प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनने के लिए पूरा देश बेसब्री से हर महीना अंतिम रविवार का इंतजार करता है और बहुत ये लाभप्रद होता है। बहुत जानकारी इसमें मिलती है। पूरे देश के अंदर में अनेकों प्रतिभाएं छुपी हुई हैं जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात के माध्यम से पूरे देश के लोगों के सामने में रखते हैं।
हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह आज रायपुर में आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत शामिल हुए। इस दौरान 6 विद्यार्थियों को पीएचडी, 88 विद्यार्थियों को एलएलएम और 148 विद्यार्थियों को बीए एलएलबी ऑनर्स स्नातक की उपाधि प्रदान की गई। समारोह में शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 10 स्नातक और 3 स्नातकोत्तर छात्रों को 36 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। समारोह को संबोधित करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि कानूनी पेशे में लंबी और सफल पारी खेलने के लिए सहयोग और धैर्य दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। उन्होंने कहा कि कानून का क्षेत्र कोई छोटी दौड़ नहीं बल्कि एक लंबी दूरी का खेल है जिसमें अनुभव के साथ व्यक्ति की अहमियत बढ़ती है। उन्होंने युवाओं को सलाह दी कि वे अपने सहपाठियों को प्रतिद्वंद्वी के बजाय जीवन भर का साथी समझें और आपसी सहयोग की भावना विकसित करें। शुरुआती संघर्षों का जिक्र करते हुए उन्होंने छात्रों से धैर्य बनाए रखने की अपील की और कहा कि इस पेशे में पहचान रातों रात नहीं बल्कि निरंतर मेहनत और ईमानदारी से हासिल होती है। कार्यक्रम में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पी एस नरसिम्हा, प्रशांत कुमार मिश्रा, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा, राज्य के जनजातीय मंत्री रामविचार नेताम और विधि मंत्री गजेंद्र यादव मौजूद थे। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के परिसर में 50 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले नए सभागार परिसर की आधारशिला रखी। साथ ही उन्होंने अनुसंधान अवसंरचना को मजबूत करने के लिए 30 अनुसंधान कक्षों और एक बोर्ड रूम से सुसज्जित अनुसंधान केंद्र और स्पोक ब्लॉक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वीसी विवेकानंदन, रजिस्ट्रार डॉ दीपक के श्रीवास्तव और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उपस्थित थे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज नवा रायपुर के आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान में बने देश के पहले डिजिटल संग्रहालय का अवलोकन किया। उन्होंने इस संग्रहालय की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश के हर नागरिक को जनजातीय इतिहास और संस्कृति से वाकिफ होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने छत्तीसगढ़ के जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आंदोलनों और शौर्य गाथाओं पर संग्रहालय में बने गैलरियों को देखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनजातीय आंदोलनों की स्मृतियां लोगों को शोषण और अन्याय के खिलाफ एकजुट होने और उसका प्रतिकार करने के लिए प्रेरित करेंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। माओवादियों के शीर्ष नेता देवजी और मल्ला राजीरेड्डी ने अपने करीब 15 साथियों के साथ तेलंगाना पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। माओवादी देवजी छत्तीसगढ़ सहित तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य में मोस्ट वांटेड था। सरकार ने इन पर करीब 1.5 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया था। देवजी नक्सल संगठन की सेंट्रल कमेटी का सेक्रेटरी था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देवजी सहित अन्य माओवादियों के आत्मसमर्पण को नक्सल विरोधी अभियान की बड़ी सफलता बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नक्सल मुक्त भारत का संकल्प अवश्य पूरा होगा। वहीं उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इन माओवादियों का समर्पण सशस्त्र माओवाद समाप्त होने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
सशस्त्र नक्सलिज्म के समापन की दिशा में आज जो सूचना तेलंगाना से आ रही है कि बसवराजू के न्यूट्रलाइज होने के बाद नारायणपुर में नक्सली कमान संभाल कर रखने वाला व्यक्ति है वह देवजी था और आज उसने तेलंगाना पुलिस के समक्ष सरेंडर किया है, ऐसी सूचना आ रही है। साथ ही साथ जो अबूझमाड़ में सक्रिय रहा है ऐसे मल्ला राजू रेड्डी, संग्राम विशेष रूप से हमारे यहाँ संग्राम के नाम से जानते हैं, उसने भी सरेंडर किया है, ऐसी सूचना आ रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अमित शाह जी ने जो घोषणा की है 31 मार्च 2026 तक इसके लिए देशव्यापी काम हो रहा है और निसंदेह अभियान सफल होगा।
छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र कल 23 फरवरी से शुरू होगा। 20 मार्च तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 15 बैठकें होंगी। सत्र की शुरुआत राज्यपाल रमेन डेका के अभिभाषण से होगी। वहीं 24 फरवरी को वित्त मंत्री ओपी चौधरी वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि राज्यपाल के अभिभाषण के कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर 25 फरवरी से चर्चा शुरू होगी। राज्यपाल के अभिभाषण और वित्त मंत्री के बजट भाषण का सीधा प्रसारण दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि 9 से 17 मार्च तक सदन में विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। इनमें छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र विधेयक, छत्तीसगढ़ लोक सुरक्षा प्रवर्तन विधेयक और छत्तीसगढ़ अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विधेयक शामिल है। डॉ सिंह ने बताया कि आय व्यय की मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक पर 18 मार्च को चर्चा होगी। इस बीच आज रायपुर में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बजट सत्र को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक जारी है। बैठक में नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हो रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बस्तर से कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल को विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया है। वहीं डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू को मुख्य सचेतक और मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया को उप सचेतक नियुक्त किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सहमति के बाद ये नियुक्तियां की गई हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि एआई इम्पैक्ट समिट भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ति का उपयोग करने की दिशा में विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के नवे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, 242 विद्यार्थियों को प्रदान की उपाधि। माओवादियों के शीर्ष नेता देवजी और मल्ला राजी रेड्डी ने अन्य माओवादियों के साथ तेलंगाना पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। और कल से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र। 20 मार्च तक चलने वाले सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।